नमस्कार आदाब साथियों, मैं दीपक,
मैं मधु
और मैं हूँ किशन।
स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे नए कार्यक्रम जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जिनसे है आपका सीधा सरोकार। तो चलिए सुनते हैं खबरें जरा हटके।
दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ खबरें मीडिया की दुनिया से।
प्रेस की शक्ति के क्या कहने साथियों, ये अगर चाह लें तो लोगों की सोच और मानसिकता भी बदल देते हैं। अमेरिका के एक राजनीतिक वैज्ञानिक लीन वार्विन कहते हैं, यदि मीडिया सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने में सक्षम है तो वह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों में भागीदारी बढ़ाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मदद कर सकती है। 5 साल के अध्ययन के परिणाम में यह पाया गया कि जब समाचार संगठनों ने पानी की गुणवत्ता और जलवायु परिवर्तन के नतीजों जैसे विवादित विषयों पर कई कहानियां चलाईं, तो उन्होंने इन विषयों के बारे में सार्वजनिक बातचीत को काफी बढ़ाया और यहां तक कि कुछ लोगों के दिमाग को भी बदल दिया। इस प्रकार यदि प्रेस चाह ले तो समाज में व्याप्त रूढ़िवादी कट्टर एवं विकृत मानसिकता को बदल सकती है और एक तार्किक प्रगतिशील समाज की स्थापना में अपना अभूतपूर्व योगदान दे सकती है। अब तो बस हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि मीडिया निष्पक्ष पत्रकारिता करे और समाज में नई सोच की नींव डालने का प्रयास करे। देखते हैं ये कब तक होता है।
तो दोस्तों, मीडिया की दुनिया से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वर्ष 2011 के जनगणना से कितने लोग बेघर हुए थे।
वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में 9,38,000 लोग बेघर हैं, पर बेघर लोगों के साथ काम कर रहे कार्यकर्ताओं के मुताबिक यह संख्या एक गलत आंकलन है, क्योंकि सही मायने में बेघरों की संख्या इससे भी अधिक है। एक्शन इंडिया के कार्यकर्ता इंदु प्रकाश सिंह के मुताबिक देश में 2,18,750 रैनबसेरों की जरूरत है। कोलकाता, जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, और 2017 की जनगणना के मुताबिक 70,000 लोग बेघर हैं, जबकि HLRN के कार्यकर्ता के मुताबिक यह संख्या करीब 1.5 लाख है। 2014 में नई दिल्ली में कड़ाके की ठंड में 100 से अधिक बेघर लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोलकाता और अधिकांश अन्य शहरों में 33 रणबसेरा मुख्य रूप से खाली रहती है। जो लोग बाहर से आकर काम करते हैं उन्हें इस रणबसेरा से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहना पड़ता है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि बाढ़ और सूखा में अक्सर शहरों में बेघर लोग खुले आसमानों के नीचे रहने का जोखिम उठाते हैं और उन्हें खाद्यान्न योजनाओं, बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, निशुल्क शिक्षा, जो कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले आबादी के लिए उपलब्ध कराई गई है, उसका लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वे निवास प्रमाण पत्र प्रदान नहीं कर सकते। वर्तमान में 790 शहर को कवर करते हुए इस योजना के अंतर्गत 1 लाख शहरी आबादी में एक रैनबसेरा होना चाहिए। रैनबसेरा में रहने वाले लोगों को शौचालय, पेयजल, कंबल, लॉकर, प्राथमिक चिकित्सा किट और रसोई गैस जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए और समय समय पर स्वास्थ्य जांच, कुछ दवा लागत पूर्ति और कानूनी सहायता के साथ संस्थागत टाइप की सुविधा भी उन्हें मिलनी चाहिए।
तो चलिए, मैं किशन आज मैं आपको बताऊंगा राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अश्नेरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति के संबंध में। दोस्तों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, जहां पर ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिला है। राजस्थान के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 18 जिले में 40 PHC में से एक है, जो राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने पिछले साल सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत प्रबंधन के लिए निजी पार्टियों को सौंप दिया था। 40 PHC चलाने वाली निजी पार्टियों में विस फाउंडेशन एक गैर सरकारी संगठन है जो हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी में नवाचार पर काम करता है। इस गांव में करीबन 3 महीने से डॉक्टर नहीं थे और इससे परेशान कुछ निवासियों का कहना है कि ये केवल एक नाम का अस्पताल है। साथ ही राजस्थान में सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि निजी संगठनों द्वारा प्रतिबंधित PHC अब उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा पर अच्छी तरह से काम कर सकती है, लेकिन निवारक और बढ़ावा देने वाले स्वास्थ्य उपायों को लागू नहीं करते हैं। राजस्थान सरकार ने 213 PHC को चलाने के लिए गैर लाभकारी और लाभकारी संगठन दोनों ही ने मिलकर PHC को पार्टनरशिप में चलाने का निर्णय लिया, जिसमें ये शर्त रखी गई थी कि सरकार प्राइवेट पार्टी को 5 साल तक PHC चलाने के लिए 22 लाख से कम 35 लाख रुपए के बीच भुगतान करेगी और इसके साथ ही निजी संगठन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के बाद अनुबंध को करीबन 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। और इस अस्पताल में कम से कम 11 स्टाफ के सदस्यों में डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और क्लीनर शामिल होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं मिलती है। सरकार ने जो नई तकनीक अपनाई है उसको आकलन करने के लिए सरकार ने निजी प्रदाताओं द्वारा चलाए जाने वाले 5 PHC का दौरा किया और सुविधाओं का उपयोग करने वाले निवासियों से उनकी जानकारी मांगी, जिसमें कुछ गांवों में इस सेवा से कुछ लोग संतुष्ट थे लेकिन कुछ अन्य लोग जो इस सेवा से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे। साथ ही राजस्थान में स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी चिंतित है कि इस कार्यक्रम को बिना परीक्षण के एक बड़े पैमाने पर क्यों लागू किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने अभी तक एक स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं किया। 40 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावा 2017 में राज्य ने 57 से अधिक शहरी और ग्रामीण PHC को निजी संगठनों को सौंप दिया। इसके बाद लोगों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक बैठक का आयोजन किया और बड़े पदाधिकारियों से शिकायत की। जब ये समस्या धीरे धीरे बढ़ने लगी तब लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर सरकार निजी तौर पर चलाने वाले PHC के खिलाफ शिकायत के बारे में जागरूक होने लगी। फिर एक दिन राजस्थान में अस्पताल प्रशासन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर RN मीना ने कहा कि सरकार ने शिकायतों पर आधारित 4 PHC के साथ अपने अनुबंध रद्द कर दिए हैं और साथ ही राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल को लागू करने का फैसला किया है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की प्रस्तुति? अगर आपके पास या आपके आसपास के क्षेत्र में भी ऐसे ही कुछ खबरें हैं जो जरा हटके हैं तो उन्हें शामिल कराएं अपने मोबाइल से नंबर 3 दबाकर। साथ ही इस कार्यक्रम को पसंद करने के लिए दबाएं नंबर 5। तो सुनना ना भूले हर बुधवार और शनिवार शाम 4 बजे आपका अपना कार्यक्रम खबरें जरा हटके आपके मोबाइल वाणी पर। धन्यवाद।